स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 20 तारीख और दिन बुधवार। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान पहुंचे भारत, मोदी ने हवाई अड्डे पे किया स्वागत।
पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बदले में अगर कोई सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है इन द नियर फ्यूचर तो हो सकता है।
पुलवामा हमले के बाद बीकानेर में रह रहे पाकिस्तानियों को जिला छोड़ने का आदेश।
बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके विभिन्न तरह के रोजगार कर रहे हैं, काश्तकार के काम भी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को इसमें निर्देशित भी किया गया है। और
हिंदी के शिखर आलोचक नामवर सिंह का निधन।
का जो कद था, हालांकि उन्होंने किताबें कम लिखी, पर उनकी उपस्थिति, उनकी वक्तृता, उनका शिक्षण, वो अपने आप में जो है वो हिंदी साहित्य को एक।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
22 समाचार दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस सलमान का हवाई अड्डे पर स्वागत किया है। प्रिंस सलमान ऐसे समय पर भारत का दौरा कर रहे हैं जब पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद बढ़ा हुआ है। वेनेजुएला की सेना ने एक बार फिर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है और राष्ट्रपति ट्रंप की विपक्षी नेता खुआन गुइदो का साथ देने की मांग को नकार दिया है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिखते हुए रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने कहा है कि नई सरकार थोपने का कोई भी प्रयास मादुरो समर्थकों की लाशों से गुजरकर ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सेना अमरीका और अन्य देशों की ओर से भेजी गई राहत सामग्री को भी देश में नहीं घुसने देगी। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने कहा, ऐसा कभी किसी ने सुना है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मूल बिंदुओं का ही खुला उल्लंघन करके डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की सेना को आदेश देने का प्रयास करें और देश के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय मदद के बहाने मतभेद को बढ़ावा दें और प्रोत्साहित करें। जरा कल्पना कीजिए कि किसी सरकार का कोई नेता कैसा लगेगा जब वो अमरीकी सैनिकों से अपने सर्वोच्च कमांडर को नजरअंदाज करने के लिए कहेगा। अमेरिका समेत तो दुनिया भर के दर्जनों देशों ने खुआन गुइदो को अंतरिम राष्ट्रपति स्वीकार किया है और देश में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। गुइदो ने सेना से राहत सामग्री को देश में आने देने की अपील करते हुए कहा है कि उन्हें मादुरो की सेवा और देश की सेवा में से किसी एक को चुनना होगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन के हुदैदा शहर से हूती विद्रोहियों और सरकारी सैन्य बलों के बीच 24 घंटे के भीतर ही पीछे हटने के लिए समझौता हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के दूत मार्क ग्रिफिथ ने सुरक्षा परिषद के समक्ष कहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच ताजा वार्ता के बाद यमन उम्मीद की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटानी सरकार ने ब्रिटेन से सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट लड़ाके से विवाह करने वाली ब्रिटानी किशोरी की नागरिकता वापस ले ली है। हाल के दिनों में शमीमा बेगम नाम की इस किशोरी ने सीरिया के शरणार्थी शिविर में कई मीडिया इंटरव्यू दिए हैं और ब्रिटेन वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है। फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ हमले के कई मामले सामने आने के बाद देश भर के शहरों में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। राजधानी पेरिस में भी रैली का आयोजन किया गया। आयोजकों का दावा है कि इस रैली में 20,000 लोग शामिल हुए। संसद के काम को भी रोक दिया गया और कई सांसदों और मंत्रियों ने भी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिपो ने कहा है कि हमलावरों को सजा दिया जाना बेहद जरूरी है। यहूदियों के खिलाफ हुई सबसे ताजा घटना में पूर्वी फ्रांस की एक कब्रगाह में 90 कब्रों पर स्वास्तिक के निशान बना दिए गए। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है कि फ्रांस के लोगों को दिखाना होगा कि यहूदी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह फ्रांस के गणतंत्र के खिलाफ हमले हैं और यह जरूरी है कि इस खतरे का सामना कर रहे हमारे संस्थान हमारे मूल्यों को बनाए रखें और साथ रहें। मेरा मानना है कि हमारी मान्यताओं जिम्मेदारियों पदों से आगे बढ़कर हमें एकजुट होकर यह कहने की जरूरत है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप के शीर्ष सलाहकारों पर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सऊदी अरब को बेहद संवेदनशील परमाणु तकनीक सौंपने के प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका BBC हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 20 तारीख और दिन है बुधवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत दौरे से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी युवराज सलमान बिन मोहम्मद कल देर रात दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरह मोदी ने क्राउन प्रिंस को बिठाकर खुद तो गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन क्राउन प्रिंस का जिस गर्मजोशी और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि सिर्फ एक दिन पहले सलमान ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की सहायता राशि दी है। उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना खर्च करेगी, वो सेना जिस पर भारत ये आरोप लगा रहा है कि पुलवामा चरमपंथी हमले के पीछे उसका सीधा हाथ है। हमारा साथी दिलनवाज पाशा ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमेरिका के डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान से बात की और पूछा कि क्राउन प्रिंस के इस भारत दौरे को आप कैसे देखते हैं।
देखिए, इसमें कई चीजें हैं, मुझे बड़े ताज्जुब हुई वो तस्वीर देखकर। ये हुआ है कि MBS का जो स्टॉक है वेस्ट में वो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो ये जो पाकिस्तान इन्होंने गए हैं, ये अपना इमेज और अपना इंटरनेशनल स्टैचर को वो यूं कहिए कि उसको री इमेजिन करना चाह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त, अपनी अहमियत, और उसमें पाकिस्तान उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है। लेकिन इंडिया और सऊदी अरब के ऐसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं हैं, हालांकि ट्रेड और रीइंबर्समेंट जो आते हैं सऊदी अरब से वो तो काफी सिग्निफिकेंट है, ऑयल के ट्रेड भी होता है, लेकिन इतना वेलकम करना सऊदी अरब को मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ, ये और बात है, अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बदले में अगर कोई सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है इन द नियर फ्यूचर, तो हो सकता है कि वो एंटी मुस्लिम के बजाय सिर्फ एंटी पाकिस्तान उसको जाहिर कर सकते हैं बाय पोजिंग कि इंडिया और दूसरे मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इसके बियॉन्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो वेलकम मिला है MBS को।
जिस तरीके से प्रिंस सलमान का दौरा पहले से तय था, हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य रहा होगा अपने तेल की बिक्री बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, लेकिन जो पुलवामा हमला हुआ है इसने डायमेंशंस बदल दिए हैं, माहौल बदल दिया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है जब नरेंद्र मोदी और प्रिंस सलमान आज बात करेंगे तो उनकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर के कोई किसी तरीके का बयान आ सकता है?
देखिए, एक तो एक दिलचस्प चीज ये हुई कि इंडिया के बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्शंस के वजह से MBS पाकिस्तान से डायरेक्टली इंडिया नहीं आए, वो वापस रियाद फ्लाई करके फिर रियाद से इंडिया आए हैं। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वो उन्होंने एक मजीद स्टेप लिया है, हालांकि वो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट एक्स्ट्रा है। दूसरी चीज ये है कि MBS ने ये भी बयान, एटलीस्ट उनके ऑफिस से आया है, कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया का जो सीधा सीधा डिमांड है, जो टेंशन है, सिर्फ इमरान खान कम कर सकते हैं। अगर वो कल जाके मौलाना मसूद अजहर को अरेस्ट कर लेते हैं, जैश ए मोहम्मद के जो ऑफिसर्स है, उनके जो फंड रेजिंग के डब्बे हैं सारे मसाजिदों में जो लगे हुए हैं, अगर वो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ सीरियस एक्शन लेते हैं तो ये टेंशन कम हो सकता है। लेकिन MBS क्या कर सकते हैं मुझे अभी तो नहीं है, मतलब वो इंडिया के साथ ट्रेड अगर करें भी तो सिक्योरिटी जो थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू, वो तो नहीं कम होगी। तो मैं खुद भी बड़े यूं कहिए कि बेताबी से उनके बयान का इंतजार। मुझे लगता है कि ये बेसिकली फेस, मतलब सुपरफिशियल बयान होगा, इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। हाँ, ये देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी MBS के साथ इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो शेयर करते हैं या नहीं। अगर वो शेयर करते हैं MBS के साथ, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद जाहिर हो जाए, तो शायद इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के बारे में पता चले।
ये थे डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुख्तदर खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल कहा कि अगर भारत किसी तरह का कोई हमला करता है तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। जाहिर है ऐसे में अब भारत का रुख क्या होगा या क्या होना चाहिए, यही सवाल पूछा हमारी BBC की संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनि से।
वो देयर इज नथिंग न्यू, कोई जो उन्होंने कहा है वो कोई नई बात नहीं कही है। हर ऐसे किसी हमले के बाद में पाकिस्तान कहता है कि आप हमको एविडेंस दीजिए। आप रिकॉल कीजिए 2008 में जो बम्बई वाला अटैक हुआ था उसके बाद एविडेंस पे एविडेंस उनको दी जा चुकी है। हमारे पास इस बात का सबूत है कि बहुत सारे पाकिस्तानी एनालिस्ट ने, यहाँ तक कि उनके जो फेडरल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, उन्होंने एक आर्टिकल डॉन में लिख के साफ कहा कि बॉम्बे में हम लोगों का हाथ था। नवाज शरीफ ने इंडिकेट किया बॉम्बे में हम लोगों का हाथ था। मुशर्रफ 10 बार कह चुका है कि हम इन सब लोगों को मदद करते हैं, क्या एविडेंस मांग रहे हैं?
तो इस पाकिस्तान की टिप्पणी के बाद भारत का क्या रुख होना चाहिए?
अगर उसकी फौज को ये बता सकते हैं कि देखिए ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, उसको अनअफोर्डेबल, जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाए, ऐसे कोई सजा अगर पाकिस्तान की फौज को और जिहादियों को हम दे सकते हैं तो उसको देना चाहिए। दूसरी बात, भारत को सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि जो कश्मीर में एलिनेशन है, आफ्टरऑल पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाता है कि कश्मीर में कुछ न कुछ बौखलाहट है, उस बौखलाहट को सियासी तौर पर राजनीतिक दृष्टि कौन से अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जो मैं समझता हूँ हम लोग नहीं कर रहे, ये सरकार ठीक से नहीं कर रही है, पिछली सरकारों ने भी बहुत ढुलमुल नीतियां अपनाई है, तो जब तक आप उसका एक राजनीतिक समाधान नहीं निकालेंगे कश्मीर की समस्या का, तब तक आपका जो भी दुश्मन होगा उसका फायदा उठाएगा।
इमरान खान एक तरफ तो कहते हैं कि हमले का जवाब देंगे और दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या चाहता क्या है?
नहीं नहीं, ये पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। देखिए सऊदी अरेबिया ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ भी कहा हो लेकिन ये कहा है कि आप टेररिज्म को रोकिए, चीन ने कहा है, ईरान उनसे कह रहा है, अमेरिका ने ऊपर कहा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसको सॉफ्टन करने के लिए इमरान खान से फौज ने ये बयान दिलवाया है कि आप कहिए हम तो बातचीत को तैयार है, आप हमसे क्यों झगड़ा करेंगे, हम तो आपके साथ काम करने को तैयार है। ये एक डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग है जो पाकिस्तान ने बहुत सक्सेसफुली की है। अगर हमें उसके ट्रैप में आना है तो एक बात है, और नहीं आना है तो हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। जब एक एग्जांपल दूं मैं, 1971 में अगर हम ये सोचते कि हमको जब अमेरिका हाँ भर देगा या रूस हाँ भर देगा या चीन हाँ भर देगा तब हम 1971 की लड़ाई लड़ेंगे, तो लड़ाई कभी नहीं होती। हमें अपना फैसला करना है और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है।
ये थे प्रोफेसर एसडी मुनी। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के लोगों और कश्मीर के सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। राज्यपाल के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं घाटी के लोग, बता रहे हैं हमारे साथी माजिद जहांगीर।
सेना के एक रिटायर्ड कर्नल की अपील का समर्थन करते हुए मेघालय के राज्यपाल तथा रॉय ने मंगलवार को अपने एक ट्वीट में बताया है कि सुरक्षा बलों को मारे जाने के खिलाफ रिटायर्ड कर्नल का सुझाव अहंसिक है और मैं इस सुझाव से सहमत हूं। सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपील करते हुए कहा है कि कश्मीर मत जाओ, 2 साल के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए कोई न जाए, कश्मीरी व्यापारियों से कुछ भी न खरीदा जाए जो हर वर्ष सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं, कश्मीरियों की हर चीज का बहिष्कार किया जाए। इस बयान के बाद कश्मीर के राजनीतिक दलों और व्यापार मंडल ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अली मोहम्मद सागर कहते हैं,
ये पोलराइज सिचुएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर के लोग भी इसी मुल्क को बिलोंग करते हैं जिसको वो बिलोंग करते हैं, अगर वो मजहब के आधार पे, सेक्शन के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे लोगों में फर्क करना चाहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद यासीन खान का कहना था कि इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान निंदनीय है।
इस वजह से हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसे बयान देने से, अगर हम भी चाहें तो हम भी ऐसे बयान देंगे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे बयान निकले और एक ऐसे जिम्मेदार इंसान से, और इससे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस ओहदे पे किन लोगों को रखा हुआ है।
गौरतलब है कि 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 जवान मारे गए थे और अन्य घायल हो गए थे। उस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश मोहम्मद ने ली है। सेना ने मंगलवार को श्रीनगर में एक प्रेस सम्मेलन में बताया था कि पुलवामा हमले के 100 घंटों के भीतर जैश मोहम्मद की लीडरशिप को मार दिया गया है। सेना ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जैश मोहम्मद संगठन ने इस हमले को ISI और पाकिस्तानी सेना की मदद से अंजाम दिया है। सोमवार को पुलवामा जिला में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 जैश के चरमपंथियों को मारने का दावा किया था। पुलिस और सेना के सूत्रों के माध्यम से बताया गया था कि पुलवामा में मारे गए 3 चरमपंथियों में से एक चरमपंथी 14 फरवरी को सीआरपीएफ की कार्रवाई पर आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड था। पुलवामा हमले के बाद भारत में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों की लहर चली थी। जम्मू में भी पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों के विरुद्ध में प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के बाद जम्मू में कल 6 दिन के बाद कर्फ्यू में कई घंटों तक ढील दी गई। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद से लगे बीकानेर में जिला प्रशासन ने 48 घंटों में पाकिस्तानी नागरिकों को जिला छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश से पाकिस्तान से शरण की गुहार लेकर आए हिंदू सहम गए हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ कहा है कि इसमें पाकिस्तानी हिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है। सुनिए राजस्थान से नारायण बारेठ की ये रिपोर्ट।
वतन परस्ती के बुलंद होते नारे और पाकिस्तान के विरुद्ध उमड़ते जनरोष के बीच बीकानेर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में जिले की सीमा से बाहर जाने को कहा है। प्रशासन ने होटल सराय जैसे स्थानों पर पाकिस्तानी नागरिकों के ठहरने पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को मदद करने और रोजगार देने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की बात कही गई है। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने अपने इस आदेश के बारे में मीडिया से कहा,
वो सबको हमने आदेशित किया है कि वो बीकानेर में हम नहीं रहेंगे, उनका बीकानेर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके विभिन्न तरह के रोजगार कर रहे हैं, काश्तकार के काम भी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को इसमें निर्देशित भी किया गया है। ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि कोई भी बीकानेर का व्यक्ति उनको कोई किसी भी तरीके का रोजगार भी नहीं देगा। कोई व्यक्ति अगर बीकानेर का नागरिक भी अगर उनको कोई खेती देता है, कोई दुकान देता है चलाने के लिए, तो वो भी जो है अपराध की श्रेणी में आएगा, तो वो भी अलाउड नहीं है। जबकि NOC भी नहीं मिलेगी, दे आर नॉट वेलकम हियर, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी बाहर जाना होगा।
जिला कलेक्टर ने BBC से बातचीत में कहा कि आदेश पाकिस्तान से आए हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। वो ये नहीं बता पाए कि ऐसे कितने पाकिस्तानी बीकानेर जिले में रह रहे हैं। जिला प्रशासन के इस फरमान से पाकिस्तान से आए हिंदू भयभीत हो गए। वे पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की शिकायत लेकर भारत आए और फिर वापस नहीं लौटे। इनमें से ज्यादातर या तो भील आदिवासी हैं या फिर दलित। बीकानेर में इन हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे धर्मपाल भील खुद कभी सरहद के उस पार रहते थे, वे भारत के नागरिक हैं। धर्मपाल भील कहते हैं इस फरमान ने उनकी नींद उड़ा दी है।
बहुत परेशान लोग हो गए सर, हम लोग तो सोच रहे हैं पूरी परिवार के साथ में आए हुए लोग हैं सर, तो हमारे साथ तो ये अन्याय होगा सर, ये बात नहीं है। जाएंगे कहाँ, हम तो वहाँ भी परेशान थे पाकिस्तान के अंदर भी, और ये हमें भी यहाँ भी ये परेशानी मिल रही है। आदेश आया गया 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान अपने जाने का आदेश है यहाँ से खाजूवाला छोड़कर। तो जितने भी लोग हैं सर हमारे यहाँ खाजूवाला के अंदर भी रह रहे हैं सर, कम से कम 500 परिवार है सर यहाँ, हमारे लोग ये कहाँ जाएंगे सर बच्चों को छोड़कर।
इन हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे सीमांत लोक संगठन के मुताबिक राज्य में कोई 15,000 पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं, वे भारत की नागरिकता के लिए गुहार कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोडा ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है वे इसका विरोध करेंगे।
न सिर्फ गैर मानवीय है बल्कि गैर कानूनी भी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का 19 अगस्त 2016 का ऑर्डर ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको कंसर्न FRO रजिस्टर करें, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि रजिस्टर नहीं है उनको वहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये इस ढंग का एक ऐसा खौफ पैदा हो गया है, तो हम लोग मानवाधिकार आयोग को भी लिखेंगे। खामखा आपने बिना सोचे समझे मतलब बीकानेर से आप निकाल देंगे, मतलब क्या हुआ, आप बीकानेर से कहाँ निकालेंगे, बीकानेर अलग मुल्क है क्या।
वे साल महीनों से भारत में रह रहे हैं और गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान से उखड़े तो भारत चले आए, अब उन्हें लगता है कि भारत से उखड़े तो कहाँ पनाह लेंगे। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर।
और अब अखबारों की समीक्षा, जी बताएं दिलनवाज।
कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार पुलवामा हमले पर बयान दिया और उसी से जुड़ी खबरें आज सभी अखबारों में सुर्खियां हैं। दैनिक भास्कर लिखता है इमरान की जुबान पर जंग, तो दैनिक जागरण कह रहा है भारत की तैयारी से सहमा पाक। पंजाब केसरी ने लिखा है मोदी से घबराया इमरान। इसके अलावा एक और तस्वीर जो आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित है वो है 34 वर्षीय मेजर विभूति शंकर दोंडियाल की पत्नी की। ये मेजर पुलवामा में हुए एक और एनकाउंटर में मारे गए थे। अपने पति के ताबूत के पास वो उनको चुंबन दे रही हैं और उन्होंने एक बयान दिया, ये बयान भी सभी अखबारों में छपा है, मैं उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। आई लव यू विभू, हम सबको आपसे प्यार है, लेकिन आपने जिस तरह हर किसी को प्यार किया वह अलग है, क्योंकि आपने लोगों के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी, आप बहादुर थे। हम फिर मिलेंगे ऐसी दुनिया में जहाँ आतंक का साया ना हो। इसके अलावा एक और खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो आज जनसत्ता के पहले पन्ने पर प्रकाशित है। भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ने वाली रैपिड रेल को मंजूरी दे दी है। 42 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग होगा जिस पर 1 घंटे में सफर पूरा कर लिया जाएगा और ये योजना बनाई गई है दिल्ली NCR क्षेत्र में यातायात की सेवाओं को बेहतर करने के लिए।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। हिंदी के शिखर आलोचक नामवर सिंह का कल देर रात निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। मैंने वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी से पूछा कि नामवर सिंह का जाना हिंदी साहित्य जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति है।
बहुत बड़ा सदमा है। हिंदी आलोचना में बहुत उनके कद के बहुत कम लोग होंगे। आप देखिए, जब हम याद करते हैं बड़े आलोचकों के नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो परंपरा शुरू होती है, तो उसके बाद मुश्किल से 10 नाम गिनना भारी पड़ जाता है। तो डॉक्टर नामवर सिंह का जो कद था, हालांकि उन्होंने किताबें कम लिखी, पर उनकी उपस्थिति, उनकी वक्तृता, उनका शिक्षण, वो अपने आप में जो है वो हिंदी साहित्य को एक बड़ी गरिमा, बड़ी ऊष्मा देता था।
नामवर सिंह सिर्फ हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़ी पिलर नहीं थे, बल्कि नामवर सिंह क्या हिंदी साहित्य को भारत में नामवर सिंह से पहले और नामवर सिंह के बाद की संज्ञा दी जा सकती है जब भी भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जाएगा?
ये तो जो साहित्य के ज्यादा विशेषज्ञ लोग हों वही इसका निर्णय करेंगे, लेकिन जितना एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, और नामवर जी के आप कह सकते हैं कि थोड़ा निकट भी था, उनसे काफी मिलना जुलना भी रहा, उनको मैंने पढ़ा भी बहुत, उस सब से जो मेरी समझ बनी वो ये थी कि उन्होंने साहित्य को समझने की एक नई हमको आंख दी। उनकी जो किताब थी कविता के नए प्रतिमान, जिनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, आलोचना को आमतौर पे नहीं मिलता है, तो पहली दफा शायद आलोचना में किसी किताब को हिंदी में जो सम्मान मिला वो कविता के नए प्रतिमान थी। तो कविता के क्या नए प्रतिमान हो सकते हैं, कैसे कविता को नई आंख से देखा जाए, इसकी समझ जो है पूरे हिंदी समुदाय को नामवर जी से मिली। नामवर जी का व्यक्तित्व तो काफी विविध था, और वो उपन्यास के बारे में जब उन्होंने निर्मल वर्मा की प्रतिष्ठा की, तो रातों रात निर्मल वर्मा की एक ख्याति जो है वो हिंदी समाज में बढ़ गई थी। ये एक आलोचक की ताकत होती है। जेएनयू में भी जो उनका लंबा कार्यकाल रहा, उस दौरान पूरा का पूरा जो एक शिक्षण का मयार है वो उन्होंने बदल दिया था। तो उनका योगदान कई क्षेत्रों में है, और आलोचना पत्रिका जो उन्होंने निकाली वो भी मैं मानता हूँ कि उस जोड़ की कोई दूसरी पत्रिका आलोचना में आसानी से नहीं मिलेगी।
हालांकि साहित्य में किसी को दूसरे से तुलना करना, कंपेयर करना शायद वो सही बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन उर्दू साहित्य में एक क्रिटिक की हैसियत से जो शमशुर रहमान फारूकी की अभी हैसियत है, मेरा ख्याल है हिंदी साहित्य में अभी नामवर सिंह की वही हैसियत रही होगी, आप क्या कहेंगे?
फारूकी साहब ने लिखा बहुत है, नामवर जी ने लिखा कम। नामवर जी बोलते ज्यादा थे, उनके जो व्याख्यान है वही संकलित होके बाद में किताबों के रूप में आए हैं, ये एक बुनियादी फर्क था। और नामवर जी उर्दू साहित्य के भी, प्रसंगवश चूंकि जिक्र फारूकी साहब का चलाया, नामवर जी उर्दू साहित्य के भी बहुत जानकार थे। अपने भाषणों में मैंने शायद ही उनका कोई भाषण ऐसा सुना होगा जिसमें उन्होंने कोई न कोई उर्दू शेर या नज्म का हवाला न दिया हो, उनको बल्कि कंठस्थ थे।
आप बीबीसी हिंदी के सुनने वालों और पढ़ने वालों को कोई ऐसी बात अगर आपको इस वक्त याद आ रही हो जो आप शेयर करना चाहें?
नामवर जी की जो खूबी ये थी, जो मैं समझता हूँ कि विचारधारा को लेकर, यूं तो नामवर जी काफी कट्टर माने गए क्योंकि लेफ्टिस्ट थे और मार्क्सवादी विचारधारा में उनका विश्वास था। उन्होंने एक दफा चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, हार गए थे। उन्होंने जो पार्टी का अखबार था जनयुग, उसका संपादन भी किया था। इसके बावजूद उनकी खूबी में ये मानता था कि उनमें एक उदार दृष्टि थी जो धीमे धीमे बहुत पनपती चली गई। इसलिए निर्मल वर्मा, जिनको बाद में तो लोगों ने दक्षिणपंथी करार दे दिया था, उनके बारे में नामवर जी की जिरह हुई एक दफा। तो वो जो जिरह थी, जो कि आपने कहा कि ऐसा कोई किस्सा ख्याल आता है, उस जिरह में नामवर जी निर्मल वर्मा का पक्ष ले रहे थे और दूसरे लोग जो चर्चा कर रहे थे वो ज्ञान रंजन का पक्ष ले रहे थे। तो किसी ने कहा कि निर्मल वर्मा ने कभी घंटा जैसी कहानी नहीं लिखी जो कि ज्ञान रंजन की कहानी है। तो नामवर जी ने तपाक से कहा कि लंदन की एक रात जैसी कहानी ज्ञान रंजन ने भी तो नहीं लिखी।
ये थे ओम थानवी, हिंदी के शिखर आलोचक नामवर सिंह नहीं रहे। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सरकारी आवास की आजीवन सुविधा को खत्म कर दिया है। सुनिए पटना से नीरज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
बिहार की राजनीति में इन दिनों सरकारी बंगले को लेकर घमासान मचा है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तेजस्वी यादव के बंगला का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पटना हाई कोर्ट ने उसी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुना दिया कि बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली सरकारी आवास की सुविधा असंवैधानिक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पद से हट जाने के बाद इस तरह की सुविधाएं दिया जाना बिल्कुल गलत है। जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को फिलहाल सरकारी बंगला आवंटित हुआ है वो हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह। ये सभी मुख्यमंत्री मौजूदा समय के विपक्षी दलों से रहे हैं, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। वैसे तो कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात हर पार्टी कर रही है, मगर बंगले के बहाने से विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने खुद दो बंगले ले रखे हैं, जिनमें से 7 सर्कुलर रोड का एक बंगला पूर्व सीएम के नाम पर आवंटित हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने बीबीसी से कहा,
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा न्यायालय के फैसलों का सम्मान किया है, हम न्यायालय के फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ इसका उदाहरण सबसे पहले नीतीश जी प्रस्तुत करें, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी एक बंगला ले रखा है, मुख्यमंत्री के रूप में भी एक बंगला ले रखा है, तो मैं समझता हूँ ये कोर्ट का फैसला और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी नीतीश सरकार पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए। हम की प्रवक्ता अनामिका पासवान ने कहा,
12M स्ट्रैंड रोड जो है वो बहुत पूर्व से ही उसमें वो रहते आए, जब वो मंत्री थे तब भी रहे हैं, जब वो हार गए थे तब भी रहे हैं, और जब उनका सीएम आवास खाली हो रहा था तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो आवास निर्धारित था उसमें वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं जब मंत्री और विधायक रहा हूँ, जिस बंगले में रहा हूँ सब दिन, मुझे उसी की आदत हो गई है, मेरे लिए आप उसी बंगले को अलॉट कर दीजिए, उन्होंने मांग किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को भी सरकारी बंगला मिला है। कोर्ट के फैसले का प्रभाव उन पर भी पड़ेगा, लेकिन राबड़ी देवी को मिले बंगले को लेकर पार्टी का कहना है कि वह बंगला लीडर ऑफ अपोजिशन तथा विधायक की हैसियत से भी मिला है, इसलिए खाली करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीबीसी से कहा,
राष्ट्रीय जनता दल हर न्यायिक निर्णय का सम्मान करते हैं और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो अभी उनको जो बंगला प्राप्त है वही जो लीडर ऑफ पोजिशन भी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, समावेश सदस्य है बिहार विधान परिषद के, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
हमने बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से भी और पूछा कि क्या विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे ये आरोप सही हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद दो बंगला ले रखा है।
माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वैसे लोगों के संदर्भ में दिया है जिनका पटना में मकान है। माननीय लालू जी के परिवार को क्या परेशानी है, इतनी संपत्ति पटना में है तो आपको कहीं भी और चैन सुकून से सोइएगा अपना घर में, लेकिन ये बंगला चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोकतंत्र लोकलाज पर चलता है, मकान के लिए और अपने सुविधाओं के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए।
कोर्ट के फैसले के बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन पूर्व मुख्यमंत्री अपना सरकारी बंगला सबसे पहले खाली करता है और कौन तेजस्वी यादव की तरह ही बंगले में रुकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बंगले को खाली कराने की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होगी। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और अब प्रमुख समाचार।
पाकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस सलमान का हवाई अड्डे पर स्वागत किया है। वेनेजुएला की सेना ने एक बार फिर से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है और राष्ट्रपति ट्रंप की विपक्षी नेता ख्वान गोइदो का साथ देने की मांग को नकार दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन के हुदैदा शहर से हूती विद्रोही और सरकारी सैन्य बल 24 घंटे के भीतर ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। ब्रिटानिया सरकार ने ब्रिटेन से सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट लड़ाके से विवाह करने वाली ब्रिटानी किशोरी की नागरिकता वापस ले ली है। हाल के दिनों में शमीमा बेगम नाम की इस किशोरी ने सीरिया के शरणार्थी शिविर में कई मीडिया इंटरव्यू दिए हैं और ब्रिटेन वापस लौटने की इच्छा जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।